हरे कृष्णा।
आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त उपस्थित हैं, इसके सुंदर गोपाल प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी पहली बार यहाँ पे भागवतम प्रवचन देने आए हैं, तो आप में से कई लोग शायद इनसे परिचित ना हो, तो संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। और इस समय इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु सेवा कर रहे हैं इस विलास मंदिर श्री श्री राधा भारती में इस्कॉन यूथ फॉरम डायरेक्टर के रूप में, और लगभग पिछले 15 सालों से अधिक शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं। और पूरे विश्व में विख्यात हैं सुंदर गोपाल प्रभु अपने सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज यूथ प्रीचिंग के लिए। शिला भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं कि एक वैष्णव की पहचान हम कर सकते हैं कि वो खुद कितने वैष्णव बनाता है। तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों से इस कैलाश मंदिर में क्या पूरे भारत में प्रभु जी के निरीक्षण में अध्यक्षता में भक्तों की बाढ़ लग गई है। तो बहुत ही जो विशेष कृपा है, इज वेरी एम्पावर्ड और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं, ना केवल दिल्ली में ही बल्कि पूरे भारत में ये फैले हुए हैं। इन्होंने अपने सब जिनको ट्रेन करके बिहार, उड़ीसा, यूपी, पंजाब सब जगह यहाँ के चारों तरफ उन्होंने भक्तों को फैला दिया है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने के लिए। तो बहुत ही विशेष आज हमारे बीच में एक भक्त उपस्थित हैं अपने सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रीचिंग के साथ साथ। प्रभु जी जाने जाते हैं अपने बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के लिए और बहुत अच्छे ढंग से शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। जनरली बहुत ही व्यस्त रहते हैं, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उनको आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद देंगे। आप सबसे निवेदन है कि अपने
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्योपनियमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात्। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र का जप किया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मोज की मेखला भेंट की। ददौ कृष्णा जिनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति कौपीनाक्षादनम माता चौछत्रम जगत पते। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्म दंड ब्रह्मचारी का दंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र तथा स्वर्ग लोक के अधिनायक देवता ने उन्हें छाता प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो ददु अक्षमालम महाराज सरस्वती अव्ययात्मन। हे राजा, ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। तस्माइति उपनीताय यक्षराट पात्रिका मदात भिक्षां भगवती साक्षात उमादाम अदंबिका सती। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भीख दी। सब्रह्म वर्चसे नैवम सभां संभावितो वटु ब्रह्मर्षि गण संजुष्टां अतिरोचत मारिसः। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकट किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमूहनम् परिस्तिर्य समभ्यर्च समिद्भिर्जुहोदद्वी। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा की और यज्ञशाला में यज्ञ संपन्न किया। अभी जो 20वां श्लोक है इसको हम दोहराएंगे। श्रुत्वा स्वमेधैर्यजमानमूर्जिताम् बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संवृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे। श्रुत्वा स्वमेधैर्यजमानमुर्जितम् बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिलसार संभृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे। श्रुत्वा स्वमेधैर्यजमानमुर्जितम् बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभृतो वारेण गां सन्नमयन् पदे पदे। सुनकर अश्वमेधई अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजमानम यज्ञकर्ता उर्जितम अत्यंत तेजस्वी बलिम बलि महाराज को भृगुणम भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देशन में उपकल्पितई संपन्न किया गया। ततः उस स्थान से जगाम चला गया। तत्र वहां अखिल सार संभृतः समस्त सृष्टि के सार भगवान भारेण भार से गाम पृथ्वी को सन्मयन दबाते हुए पदे पदे प्रत्येक पग में। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। प्रत्येक डग भरने के साथ उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तात्पर्य भगवान अखिल सार संभृत हैं, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे किंतु वे सदैव पूर्ण हैं और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं मांगना होता है। निसंदेह वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण में प्रत्येक डग से पृथ्वी को दबा रहे थे। श्रुत्वा सुमेधैर्य यजमान मुर्जितम बलिम भृगूणाम उपकल्पित जगाम तत्राखिल सार संवृतो भारण गाम सन्नमयन पदे पदे। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। प्रत्येक डग भरने के साथ उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तो आज के दिन ये जो प्रसंग है, भगवान वामन देव का अवतार, इसका जो प्रसंग चल रहा है, भगवान वामन देव अवतार ले चुके हैं और जिस कार्य के लिए अवतार लिए हैं वो कार्य करने के लिए अभी प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो श्लोक हमने पढ़े हैं 14 से 19 श्लोक, उसमें विश्व के जो ब्रह्मांड के देवी देवता हैं वो वामन देव को उपहार प्रदान कर रहे हैं। भगवान अवतार लिए हैं तो सबको इच्छा है कुछ देने की भगवान को, तो काफी सोचा होगा लोगों ने देने से पहले कि क्या दिया जाए। तो हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ गए, है ना, कि इन्होंने ये दिया, याद भी नहीं हम लोग को, है ना, किसने क्या दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि हर देवता ने या ऋषि ने जो भी दिया था वो काफी सोच समझ कर भगवान की इच्छा को, भगवान की प्रसन्नता को जानकर, जानते हुए उनको समर्पित किया, अपना बेस्ट। तो कोई व्यक्ति है वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन VIP, उसे हम मिलने जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, और यहाँ पर तो सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट पर्सन भगवान आए हैं। बड़ा अच्छा अवसर है देव देवताओं को, ऋषियों को उनकी कृपा प्राप्त करने का। तो भगवान को अर्पित करते हैं अपने हृदय का जो भाव है, प्रेम है, उपहार के रूप में। उपहार देने का उद्देश्य ये है कि भगवान को हम कुछ व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्ति है ये, भाव की अभिव्यक्ति, कि हे भगवान हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपने हम सबको अपनी कृपा प्रदान की। ये भी एक तरीका है संबंध ज्ञान में स्थित होने का, कुछ देना भगवान को, कुछ अर्पित करना। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि यत करोसि यदस्नासि यत जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, यद करोसि यदस्नासि, जो भी खाते हो, यत करोसी यदस्नासी यत जुहोसी, जुहोसी मतलब पूजा करना, ददासी यत जो भी दान देते हो, यत तपस्यसी जो भी तपस्या करते हो, वो तो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरे को पहले दो, मुझे दो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? कोई व्यक्ति बोलेगा पहले मेरे को दो फिर तुम खाना, इसमें अहंकार, देखो कैसा व्यक्ति है, शर्म नहीं आ रही है आपको? एक तरह से कहा जाए लोग, इसलिए भगवान कई भगवत गीता में कई जगह ऐसा कहते हैं, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मान लीजिए कोई भक्त आके बोले प्रभु आप मेरे को प्रणाम कीजिए, भले ही महाराज ही क्यों ना, प्रणाम करो। कई बार दीक्षा के समय ऐसा होता है, महाराज बोलते तुमने प्रणाम मंत्र नहीं बोला, पूरा प्रणाम मंत्र बोलो। ऐसा देखा गया है हमारी जो दीक्षा हो रही थी, अरे गुरु भाई हैं वो, उनका महाराज बोले प्रणाम करो, तो महाराज वो लेट आए, दीक्षा में नहीं आए, वो लेट आए, घर से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो महाराज अपने कमरे में दीक्षा दे रहे थे, तो बोले प्रणाम मंत्र याद है? तो बोले हाँ, बोले बोलो, प्रणाम किया, बोलने लगे भूल गया बीच में। कई साल से कर रहा था लेकिन उस समय भूल गया, नर्वस हो जाता है ना व्यक्ति, तो सब भूल गया, तो महाराज बोले फिर से बोलो, है ना। तो अगर व्यक्ति ये भाव को नहीं समझ पाएगा तो क्या सोचेगा, अरे अपने प्रणाम मंत्र से इतना चिंतित है। देखो अपने प्रणाम मंत्र पढ़वा रहे खुद ही, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी करुणा है, मैनिफेस्टेशन ऑफ मर्सी कंपैशन। इसलिए जो भगवान की करुणा को और उनके भक्तों की करुणा को नहीं समझ सकता, वो उनके एक्टिविटीज को नहीं समझ सकता है। क्यों करते हैं? इसलिए पूरी भागवत गीता एक रहस्य है। भागवत गीता में भगवान ने अपने हृदय की गूढ़ बातों को प्रकट किया है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम सबसे। भगवान निर्धारित कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा, यत श्रेयस स्यात् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे, हे भगवान मेरे लिए क्या अच्छा है बताइए। तो बता दिया, प्रणाम करो मेरे को, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो कैसे अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने प्रणाम करा रहे हैं, किसी को कहते अपने मुंह मियां मीठू, एक कहावत है, कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है तो उसको बोलते हैं ना मियां मीठू, अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं। उसी तरह से प्रभुपाद जी एक बार अपने विदेश में अपने शिष्य के घर गए, तो घर गए तो वेस्टर्न कंट्रीज में उनको बोले एक पानी लेके आओ प्लेट में, तो बोले पानी क्या करेंगे प्लेट में, वो भी पानी क्या करेंगे, ग्लास में लेके आए, माता जी ग्लास से पानी लीजिए, तो ग्लास में नहीं प्लेट में, प्लेट में तो खाना खाते पानी नीचे रखो, प्रभुपाद जी अपना पैर डाल दी, बोले धो इसको। पैर धोने के बाद प्रभुपाद बोले अब छिड़को अपने सिर पर, सब लोग सिर पर छिड़को। तो क्योंकि प्रभुपाद जी वास्तव में तो देखा जाए तो आचार्य को अपने आचरण से शिक्षा देना चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है तो वहां पे थे नहीं कि वह उनका पैर धोकर शिक्षा देते, है ना। तो इसलिए अगर केवल आचरण से शिक्षा देना होता तो प्रभुपाद फिर ये चीज नहीं सिखा पाते उनको। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो आचरण से, ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे आचरण शिक्षा ना दे, जैसे तो मुंह से बोलना पड़ता है, है ना। मुंह से बोलना पड़ता है, मुंह से बोलना गलत चीज नहीं है, ऐसे नहीं सोचिए। कुछ ऐसी चीजें जो, क्योंकि आचरण से शिक्षा देना है लेकिन साथ ही साथ बोलना भी बहुत जरूरी है। तो भगवान आते हैं, लीला करते हैं, आचरण करते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा उनकी लीला को। इसलिए उस लीला के पीछे क्या तत्व है, उस आचरण के पीछे तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके लिए फिर बाद में वेद व्यास के रूप में शास्त्र लिखते हैं आकर कि मैंने ये लीला किया, इसके पीछे क्या तत्व है, क्यों किया ये लीला। ये साधारण लीला नहीं है, साधारण व्यक्ति जैसा कार्य नहीं है, ये बद्ध जीव का लीला नहीं है ये। तो कौन बता सकता है ये बात। कोई वैज्ञानिक है लेबोरेटरी में बैठा हुआ है, इधर से लगे इधर केमिकल डाल रहा है, एक बच्चा बोलेगा देखो एक एक पाइप इधर उठाए, एक पाइप इधर, वो भी उठा के करने लगता है, नकल कर सकता है ना। हालांकि देखने में एक ही जैसा लगेगा, वैज्ञानिक भी कर रहा है, छोटा बच्चा भी कर रहा है, देखने में एक्टिविटी एक जैसी लग रही है। तो वैज्ञानिक जब तक उसको बड़ी बड़ी किताब लिखेगा नहीं तब तक कैसे बच्चा समझ पाएगा, है? तो इसलिए भगवान को बोलना पड़ता है। भगवान भी बोलते हैं, भक्त भी बोलते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं श्रीमद् भागवत के, जैसे प्रियव्रत महाराज, महाराज भरत, भगवान ऋषभदेव, ऐसे अनेकों महान भक्तों का जीवन चरित्र का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में किसी भी कैरेक्टर का जब लीला बताया जाता है तो तीन एस्पेक्ट बताया जाता है उसका, है ना। कैरेक्टर, एक्टिविटीज एंड टीचिंग्स। कैरेक्टर ऑफ महाराज भरत, एक्टिविटीज ऑफ महाराज भरत एंड टीचिंग्स ऑफ जड़ भरत। कैरेक्टर, एक्टिविटीज एंड टीचिंग, थ्री थिंग्स, तीन चीजें हैं। कैरेक्टर का मतलब मनसा, एक्टिविटीज मतलब कर्मणा एंड वाचा टीचिंग्स। दिखाया तीनों एक लाइन में होना चाहिए, इन वन लाइन। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि जो वाचा है वो सबसे लास्ट में आता है। मनसा मतलब उसने सुना, पढ़ा, उसको अपने अंदर आत्मसात किया, मन में, भले इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनलाइजिंग द टीचिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के शिक्षा को इंटरनलाइज करना। एक व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल इंटरनलाइज किया, इंटरनलाइज करके बैठा है वहीं पे, एक दूसरा व्यक्ति बैठा, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, एक विदाउट इंटरनलाइजिंग, दूसरा विद इंटरनलाइजेशन, दोनों बैठे हैं। बाहर से देखने से कोई अंतर नहीं लगेगा। तब एक्टिविटीज करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो लोग उसको पागल बोल देंगे, तो पागल जैसा है, है? सब छोड़ दिया, सिर मुड़ा लिया, पागल कहेंगे। ये तो पागल पागल आदमी, तो पागल बोलेंगे। हैं सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे हैं रास्ते में तो गांव के बच्चे और स्त्रियां पागल बोल रहे हैं उसको, पागल जा रहा है, पगला आ गया, देखो पत्थर फेंक रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पर। हैं अजीत से जाते थे गांव में, ऐसा होता है पागल व्यक्ति आ जाता है ना तो बच्चे उसके पीछे हो लेते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी के पीछे बच्चे हो लिए और हंसते हुए उन पर पत्थर फेंकते हैं। और पीछे पीछे पहुंच गए सब बच्चे, गंगा नदी के किनारे पहुंचे, वहां पे नंगे जाते हैं सुखदेव गोस्वामी, नंगे होते हैं, एक्टिविटीज है, देखिए नंगा घूम रहे हैं, एक्टिविटीज है, सब इंटरलाइज करने के बाद एक्टिविटी क्या, नंगा घूम रहे हैं। लोग देखने से क्या लगेगा, पागल है ये। जब वहां पहुंचे गंगा जी के तट पर पहुंचे तो पूरे पृथ्वी के सम्राट राजा परीक्षित ने उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया। आज बच्चों ने देखा नहीं राजा प्रणाम कर रहे, भागे सब वहां से। राजा परीक्षित ने इस पागल के एक्टिविटीज को समझ सके, इसके महत्व को समझ पाए। श्रीमद् भागवत बताया बच्चे पत्थर फेंक रहे, ये बात क्यों बताया जा रहा है भागवत में, कई सारी चीजें हुई होगी सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे, लेकिन यही बात क्यों श्रीमद् भागवत बताया जा रहा है कि स्त्रियां और बच्चे उनको पत्थर फेंक रहे, उनको पीछे हो लिए, हंस रहे, क्यों ये बताया जा रहा है कि मूर्ख लोग इनकी एक्टिविटीज को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो राजा परीक्षित ने उनको उनके स्थिति को समझा, तो उसी प्रकार से महान भक्त लोग जब दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तो उनके आचरण जो है वो विचित्र होते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह लगेंगे, कभी तो पागल की तरह लगेंगे। जड़ भरत परमहंस भगवान के अत्यंत उच्च कोटि के संत जा रहे हैं रास्ते में, और राजा रघुगण उनकी एक्टिविटीज नहीं समझ सके, उनकी गतिविधि को, उनके करुणा को नहीं समझ पाए। उनको पकड़ के लाओ इसको, बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, लगा दो इसको, है? तो लग गए वो भी बोले ठीक है भगवान की इच्छा, लग जाते हैं। तो अब रुक रुक के चल रहे हैं, अब ये भी एक्टिविटीज है उनका, समझ नहीं पा रहे हैं ये रुक क्यों चल रहा है, देखने में हटा कटा लग रहा है लेकिन रुक क्यों चल रहा है, बहुत गुस्सा आया, ऑलमोस्ट गाली दे रहे हैं राजा रघुगण। जड़ भरत सहते जा रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं उसको, लेकिन फिर उन्होंने फिर क्या कहा, वाचा टीचिंग्स दिया, क्या कह रहे हैं राजा रघुगण, बोले कि तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तो तुमको समझना चाहिए कि स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए, आचरण कैसे करना चाहिए। और जड़ भरत कह रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, ये तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि कौन स्वामी है और कौन दास है, हो सकता है इस जन्म में आप मेरे स्वामी मैं आपका दास हूं, और अगले जन्म में मैं आपका स्वामी और आप मेरे दास, हो सकता है मैं इस देश का राजा हूं और आप इस देश के एक साधारण व्यक्ति हो जाए अगले जन्म में, बहुत गहरी रियलाइजेशन बता रहे हैं राजा भरत अपना, जड़ भरत अपने डीप रियलाइजेशन को बता रहे हैं, और ये कोई गलत बात नहीं बता रहे, क्योंकि वो खुद रियलाइज किए हैं कि पिछले जन्म में क्या थे, वो पूरी पृथ्वी के राजा रहकर तो उनके सामने कुछ भी नहीं। राजा रघुगढ़ की का साम्राज्य ऐश्वर्य महाराज भरत के सामने नगण्य है। एक सौवीर प्रांत के राजा हैं राजा रघुगढ़, और महाराज भरत श्रीमद् भागवत बताते हैं पूरी पृथ्वी के साम्राज्य के राजा। और देख पा रहे हैं कि मैं इतना बड़ा साम्राज्य का राजा होते हुए अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा मुझे, इसलिए एक्सपीरियंस से डीप रियलाइजेशन हुआ, और वही शेयर कर रहे हैं राजा रघुगण को कि आप इतने अहंकार कर रहे हो, ये जो राजा मैं ये हूं मैं ये हूं मैं ये हूं, उपाधियां सब क्षणिक हैं, इस सब का कोई अस्तित्व नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा काल के प्रभाव से। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीजों के प्रति इतना मोह नहीं करता, इसका अहंकार नहीं करता। तो उन्होंने शिक्षा दिया, आत्मज्ञान प्रदान किया, संबंध ज्ञान बताया। श्री प्रभुपाद जी कहते कि ए मैड मैन और ए फुलिश पर्सन इज आइडेंटिफाइड रिकॉग्नाइज दैट ही इज फुलिश व्हेन ही स्पीक्स। मूर्ख व्यक्ति की पहचान कब होती है कि मूर्ख है, जब वो बोलता है, बोलने से पता चल जाएगा। हमारे जब बचपन में था मेरे गांव में एक पागल व्यक्ति थे, पागल, और वो क्या करते थे, एक चेयर लगा देते थे, सामने टेबल रख लेते थे, बिल्कुल पैंट शर्ट टाई पहन लेते थे, और बिल्कुल न्यूज़पेपर लेकर और बाहर बैठ जाते थे, ऐसे पढ़ना नहीं आता था, एक घंटे तक ऐसे बैठे रहेंगे। कोई नया व्यक्ति उधर जाएगा उनको देखते ही सोचते ये कोई आईएएस ऑफिसर होगा, और जब उसके पास जाते थे और कुछ बोलते थे है ना, मतलब उनका आवाज भी ठीक नहीं था, ना बुद्धि ठीक थी ना आवाज ठीक था, लेकिन बाहर से देखने से कोई पता नहीं कर सकता, जब बात करने जाइए तब पता चलेगा। तो ये तीन चीज कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवान भी है ना, भगवान भगवान के भक्त शिक्षाओं को अपने अंदर आत्मसात करके उसमें जो आत्मज्ञान है जो दिव्य ज्ञान है उसको अपने अंदर आत्मसात किए और उसके बाद उस पर आचरण करके दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, और तभी कोई दुखी व्यक्ति जब उनके सामने आता है तो उसको उद्धार करने के लिए उसको बताते हैं वही ज्ञान कि कैसे उसका उद्धार हो। हर व्यक्ति आचरण से नहीं सीख सकता, ज्यादातर लोग आचरण से नहीं शिक्षा प्राप्त है, क्योंकि आचरण को समझने के लिए भी एक लेवल होना चाहिए ना व्यक्ति का। ज्यादातर लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसलिए आप देखिए साधु संतों को देख के लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनके आचरण को नहीं समझ पाते कि कितना महान व्यक्तित्व है। तो उनको बताने के लिए इसलिए पहले हम कई प्रकार के ज्ञान दिया जाता है, पहले है ना वन टाइम प्रोग्राम्स है, डिस्कवर योर सेल्फ, फिर उसके बाद है ना इतने सारे सेशंस, तब जाके उनको बताते हैं शुद्ध भक्त की महिमा क्या होती है, वो सब बहुत बाद में आता है ये सब बताते हैं, इनके चरण की धूल लेनी है अपने सिर पर, इनका जूठा खाइए। तीन महाबल है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भूत उच्छिष्ट, तीन महाबल। कोई भी आई गया उसको बता दीजिए तीन महाबल आपको आज दूंगा मैं। बोला अच्छा तीन महाबल देंगे आप, मतलब उससे क्या होगा आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे क्या? महाबल, अच्छा महाबल, छोटा मोटा बल नहीं महाबल। तो क्या है वो? ये लीजिए, ये कई भक्त होते हैं, ये लीजिए धूल लेके आए, ये लीजिए बांटते। शास्त्र के अनुसार संसार की सबसे पावरफुल चीज है ये, लेकिन कोई समझ पाएगा इसको आसानी से कैसे पावरफुल है ये? तो इस बात को समझाने के लिए कितना पावरफुल है, इसके लिए, इसको समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन बताना पड़ता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। प्रचार जो है वो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर प्रचार करता है, और फिर प्रचार के बाद फिर से उत्तम अधिकारी के स्तर पर जाके सिचुएट हो जाता है। और प्रभुपाद ने यह भी कहा कि कनिष्ठ अधिकारी भी मध्यम अधिकारी के लेवल पर आके प्रचार करेगा और फिर से जाके कनिष्ठ अधिकारी में सिचुएट हो जाएगा। अलाउ किया। कई और भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी मैं तो बिल्कुल नया भक्त हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं क्या? प्रभुपाद ने कहा करो, लेकिन ये समझते हो तुम नए भक्त हो, ये मत सोचना कि प्रचार करते समय मैं मध्यम अधिकारी हो गया क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं। ये उसी तरह से प्रभुपाद को लोग समझते हैं कि उत्तम अधिकारी प्रचार करने इसलिए मध्यम अधिकारी है। एक्टिविटीज से नहीं समझा जा सकता कि व्यक्ति क्या कर रहा है। उसका इंटरनल कॉन्शियसनेस, जो मानसिक आंतरिक चेतना क्या है उसके, उस पर निर्धारित होता है वास्तव में, और उसको सही तरीके से जज करना चाहिए। चाहे हम कोई एक्टिविटीज करें, हमें देखेंगे हो सकता है कि हम प्रचार कर रहे हैं लेकिन अपनी स्थिति को सही तरीके से आंकना, assessing our position honestly, ईमानदारी से जज करना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र और आचार्य और भगवान स्वयं, गुरु साधु और शास्त्र भगवान स्वयं, इसलिए शिक्षा देते हैं, है ना, उपदेश देते हैं, आचरण भी करते हैं और उपदेश, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए श्री चैतन्य बोले आचार और प्रचार दोनों। कुछ लोग केवल आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते, कुछ लोग केवल प्रचार करते हैं आचरण नहीं करते, लेकिन कुछ लोग दोनों करते हैं। तो जब भगवान बताते हैं कि तुम सब कुछ मुझे अर्पित करो, इस पे चर्चा चल रही कि अर्पित करना, ऐसा क्यों भगवान कहते हैं कि अर्पित क्यों करना है, मुझे ही क्यों दोषारा, मेरे को अर्पित करके करो। तो भगवान की ये करना है ना, वो हमारे प्रसन्नता के लिए, हमारे सुखी जीवन के लिए, हमारे सुखी भविष्य के लिए इस तरह का उपदेश दे रहे हैं। तो देवी देवता सारे ऋषि मुनि सब इस बात को जानते हैं कि भगवान के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, वही समर्पण कर रहे हैं इन श्लोकों में। सबने सोचा क्या बेस्ट दे सकता हूं मैं, भगवान आए हैं ना, तो अलग अलग देवता जो है अलग अलग चीज दे रहे हैं, हैं? और फिर भगवान उनके सारे ऑफरिंग्स को स्वीकार किए, एक्सेप्ट करके, और फिर वहां से चल दिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया, और वो उद्देश्य था बलि महाराज का उद्धार करना। इसलिए श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जब सुने कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े, तो भिक्षा मांगने जाएंगे। लेकिन बता रहे हैं यहां पर कि अपनी कृपा दिखा रहे हैं, उन पर कृपा दिखाने के लिए वहां जा रहे हैं, उनको भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिल सार संभृत, समस्त सृष्टि के सार हैं भगवान, उनको मांगने की क्या जरूरत है, दान मांगने की क्या जरूरत है, उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बलि महाराज का उद्धार करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अदिति की इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी तपस्या किया उनकी इच्छा पूरी होगी, बलि महाराज का उद्धार होगा, और भी कई सारे लोगों के इच्छाओं को पूर्ण करेंगे अवतार लेकर। इस प्रकार से भगवान जो है वो ये लीला की, और बलि महाराज जो है वो भी महाजन है ना, 12 महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिल मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलि व्यास के वयम। तो बलि महाराज का उद्धार किए, भीष्म पितामह का भी उद्धार किए, भीष्म वो भी महाजन है, और आज भीष्माष्टमी है। भीष्माष्टमी किस लिए प्रसिद्ध है, आज के दिन भीष्म पितामह ने शरीर त्याग किया, तो भीष्म पितामह एक महाजन, महाजन शब्द महाभारत के श्लोक में आता है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाय महाजनो जेन गतः स पंथा। कि महाजन जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता सही रास्ता है, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, शास्त्र को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में मतभेद है, हैं? श्रुतयो विभिन्ना, तर्क से भी सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तर्को प्रतिष्ठा, कि तर्क से सत्य की प्रतिष्ठा अगर हो जाती तो तर्क जो है सत्य से ऊपर हो जाता है, तो तर्क जो है वो सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। तर्क में हो सकता है आज मैं जीत जाऊं तो सत्य मैं जो बोलूंगा वो हो गया, कल फिर डिबेट हुआ कल आप जीत गए तो आप जो बोल रहे हो वो सत्य हो गया, तो तर्क से जो सत्य की प्रतिष्ठा हो रही है वो सत्य बदल रहा है, जो बदलता है वो सत्य हो नहीं सकता, इसलिए तर्क से सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, विभिन्न श्रुति जो बोलती है उसमें अंतर है, मतभेद है। नासो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, कोई दो ऋषि ऐसे नहीं है जिनके मत भिन्न ना हो, कुछ ना कुछ मतभेद रहेगा ही, कलयुग में मतदान होता है, मतभेद और मतदान है, इसलिए पब्लिक परेशान है। तो मतदान से ज्यादा जरूरी है क्या, महाजनों का मत, क्या महाजनों का मत, मूर्खों का मतदान से क्या फायदा, इसलिए काउंसिल ऑफ एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट जिसको प्रभुपाद जी कहते थे जीबीसी, हम्म, वो लोग मतदान दें तो वो सही मतदान दें। उच्च कोटि के अध्यात्म में एडवांस स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स व्हेन दे सिट टुगेदर एंड दे वोट दैट इज करेक्ट। मूर्ख वोट करे उसका क्या फायदा है? तो एक मूर्ख पांच करोड़ मूर्ख मिलके उनमें से जो सबसे बड़ा मूर्ख है उसको राजा बनाते हैं। वो राजा बनता है ना, चोर मिलके महाचोर को राजा बना दिए, और वो चोर बनने के बाद नियम बना देता है कि जितने चोर है सब पुलिस में आ जाए, इसलिए वो पुलिस चोर है। पुलिस चोर क्यों है? पुलिस करप्ट क्यों है? क्योंकि करप्ट लोग राजा है, तो करप्ट लोगों को ही पुलिस में भर्ती करते हैं, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, अच्छे लोग निकाल देंगे। इसलिए ऐसे मतदान का कोई अर्थ नहीं है। ये मतदान का जो प्रोसेस है ये सिंपली टू एक्सप्लॉइट पीपल, लोगों का शोषण करने के लिए प्रोसेस बनाया गया है, क्योंकि जीतता तो वही है जो जीतना चाहता है। दोनों पार्टी में चोर है, इसको बनाओ तो वो भी आगे चोरी करेगा, फिर चार पांच साल चोरी करेगा, फिर आप उब जाओ तो दूसरे पार्टी को बनाओ, वो भी चोरी करेगा आके, फिर उसे उबो तो इसको बनाओ। वो भी जानते हैं इनके पास ऑप्शन क्या है, 10 चोर है उनमें से चुनना है किसी को, तो आप चोरी को राजा बनाओगे ना, क्योंकि सारे चोर है। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो सिस्टम है ये सब यूजलेस सिस्टम है। ये जस्ट लाइक प्रभुपाद बोलते थे कि आप ऐसे बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद दर्द होने लगा तो ऐसे हो गए, चेंज द पोजिशन, अब ठीक है, अब रिलीफ है, थोड़ी देर के बाद इधर दर्द हो जाए तो फिर चेंज करते ऐसे। आप कितने किसी भी पोजीशन में बैठिए थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दर्द होगा। उसी तरह से चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइए चाहे कोई सिस्टम लाइए उसमें प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसका डिजाइन किया गया है प्रॉब्लम के लिए। तो सिस्टम को हम क्या करना चाहिए कि इसको डिसाइड कैसे कैसे सही तरीके से चलाना, इसके लिए एडवांस सोल महाजन, और वो महाजन थे भीष्म पितामह, बलि महाराज, ऐसे महाजन। तो ऐसे महाजन भक्त जो हैं वो बहुत ही रेयर इस संसार में प्रकट होते हैं, और भीष्म ऐसे महाजन थे, और उन्होंने जब वो संसार से जा रहे थे तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम जाके इनसे शिक्षा प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि महान जो लोग होते हैं वो जाने से पहले उनका उनके जो एक्सपीरियंस है, जो मैच्योरिटी है, उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के साथ उनकी सारी मैच्योरिटी, सारा एक्सपीरियंस भी चला जाता है। इसलिए महाभारत अगर हम पढ़ेंगे उसमें मोर देन 100 चैप्टर्स भीष्म का टीचिंग्स है, क्योंकि पितामह है ना, बाकी लोग तो मरते गए, ये बचे रहे, और सब देखा, इतना कुछ देखा, इतना कुछ देखा, फिर भी टिके हुए हैं, जस्ट देखने मात्र से इतना कुछ सीखे हैं, और सब बता रहे हैं। एजुकेशन है, शिक्षा है, बुद्धि है, सब कुछ है, शक्ति है, सब है, और ज्ञान में बहुत गहराई है। इसलिए माध्यम बनाया युधिष्ठिर महाराज को, भगवान ने कहा इनसे शिक्षा लो। वो भीष्म पितामह आज के दिन अप्रकट हुए, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारियों के लिए एक आदर्श है, कैसे राजकुल में भी रहते हुए ब्रह्मचारी राज परिवार में रह रहे हैं, चारों तरफ सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, चलो ब्रह्मचारी आश्रम में रह के ब्रह्मचारी रहना इतना मुश्किल हो जाता है, और देखिए कि घर में रहते हुए ब्रह्मचारी, चारों तरफ सबका विवाह हो रहा है और उसी में रह रहे हैं, सबकी सुंदर सुंदर पति खुद विवाह करा रहे हैं, गंधारी को किडनैप करके लाए, धृतराष्ट्र विवाह करे, कितना महान कैरेक्टर है सोचिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों का शादी कराया, खुद सन्यासी है, तो उस तरह के महान व्यक्तित्व भीष्म पितामह हैं जो आदर्श दिखा रहे हैं अपने आचरण से हैं, कि हमें प्रभुपाद जी बताते हैं तत्पर में कि प्रचार के लिए ये सब करना पड़ता है। टाइम प्लेस और सर्कमस्टांस के अनुसार प्रिंसिपल्स कैसे एडजस्ट किया जाए वो भीष्म पितामह को पता था, इसलिए उनको महाजन कहा गया। तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। भीष्म पितामह की, बलि महाराज की, रामदेव भगवान की, हरे कृष्ण। मोक्ष प्राप्ति के कई मोक्ष के कई अर्थ हैं, सबसे पहले समझना है मोक्ष का अर्थ क्या है, उसको समझना पड़ेगा पहले। जब कोई व्यक्ति बुखार है, बुखार में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मोक्ष क्या है? हेल्दी हो जाए, ये भी एक मोक्ष है ना। लेकिन वो फिर से बुखार लगेगा उसको, है ना। एक मोक्ष है, मोक्ष को पांच प्रकार की मुक्ति बताई गई है शास्त्रों में, साहित्य मुक्ति, सर्प मुक्ति, साष्ठी, सालोक्य और सामीप्य, पांच प्रकार का मोक्ष। अब कौन प्रकार का मोक्ष आप चाहते हैं उसके अनुसार आपको बताया जा सकता है कि कैसे वो प्राप्त किया जाए। बुद्ध भी भगवान है, गुरु है, बुद्ध भी गुरु ही है ना। वो जो भी रास्ता दिखाता है वो क्या है, एक मिनट, जो भी रास्ता दिखाता है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? गुरु। आपने बोला बुद्ध का रास्ता, तो बुद्ध को गुरु मान लिया ना आपने, तो ये भी गुरु है। तो बिना गुरु के व्यक्ति रह नहीं सकता। किसने? हाँ, गुरु बनाया था, आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप बुद्ध को नहीं समझ। जैसे अभी बताया कि भगवान की गतिविधि को सब लोग नहीं समझ सकते, बुद्ध ने गुरु बनाया था। आप जानते हैं बुद्ध कैसे घर छोड़ के निकले? बुद्ध जो है उनका उनका जन्म का नाम था सिद्धार्थ। पिता सुद्धोधन जो थे उनका पुत्र, एक ही पुत्र सिद्धार्थ जन्म लिया, उसके कुंडली बनवाए, देखे बेटा तो सन्यासी हो जाएगा, पता बता दिया ज्योतिषी ने, ये रहेगा नहीं, ये ज्वाइन कर लेगा। पापा बड़े टेंशन में, अरे एक बेटा ज्वाइन कर जाएगा। बोले महाराज कोई उपाय नहीं है? बोले उपाय यही है, देखो संसार में लोग सन्यासी बनते हैं क्योंकि उनको जब कष्ट होता है तो वो सन्यास ले लेते हैं। तो एक उपाय है, इसको कोई कष्ट मत होने देना लाइफ में, और समय से पहले शादी कर देना, है ना। तो सुधोधन महाराज बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको कभी घर से, और ये भी ध्यान रखना कि खुद दुख ना हो इसको, और किसी दूसरे का दुख देखे भी नहीं, क्योंकि होगा दूसरे से इंस्पायर हो जाए, इसलिए घर से बाहर मत जाने देना। तो बुद्ध का जन्म हुआ और उसके बाद उनको कमरे में ही रहते थे, सारा फैसिलिटी उनको दिया जाता था, बाहर कभी निकले ही नहीं। एक दिन अचानक उनका विवाह भी हो चुका था, जसोधरा से विवाह हुआ बुद्ध का, और फिर उसके बाद बुद्ध जो है एक दिन अचानक उन्होंने अपने सारथी को कहा, आज मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, और चुपके से बिना किसी को बताए सारथी को लेकर बाहर निकल गए। और जब बाहर रोड पे गए तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है खांसते हुए, झुका हुआ है ऐसे, डंडा लेके जा रहा है। बुद्ध बोला, अरे ये व्यक्ति बड़ा दुखी लग रहा है, ये झुक के क्यों चल रहा है, खांस क्यों रहा है? सारथी ने कहा, युवराज ये बूढ़ा हो चुका है। बोले बूढ़ा हो चुका है क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है? एक पहली बार देख रहे हैं, बूढ़ा मतलब जिसे बहुत अब मरने के नजदीक, उसको मतलब मरना क्या होता है? बोले आप छोड़ के चले जाएंगे संसार, बुढ़ापे में कष्ट होता ही है। बोले कष्ट होता है मतलब मेरे पिताजी बूढ़े होंगे? बोले हाँ वो भी बूढ़े होंगे, उनको भी कष्ट होगा, वो भी झुक जाएंगे एक दिन। बोले क्या मैं भी झुक जाऊंगा? बोला हाँ आप भी झुक जाएंगे। बोले अच्छा आगे चलो। जब आगे गए तो देखे कि कई लोग, चार लोग कंधे पर उठाकर राम नाम सत्य है लेके जा रहे हैं, और पीछे लोग रोते जा रहे हैं। पूछे ये रो क्यों रहे? बोल ये व्यक्ति सो क्यों रहा है? बोले युवराज ये सो नहीं रहा है, ये जा चुका है, इसलिए उसके वियोग में रो रहे हैं लोग। बोले जा चुका है तो फिर आएगा नहीं? अब नहीं आएगा। बोले क्यों? कि मर चुका है, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, हमेशा के लिए अपने संबंधियों से दूर हो जाता है। बोले अच्छा मैं भी चला जाऊंगा, पिताजी भी चले जाएंगे मेरे? बोला हाँ सब जाएंगे। बोले तो आगे चलो। और आगे गए, और थोड़ा आगे गए, एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, उससे भी प्रश्न पूछा। तो देखिए गुरु बना ना, कौन बना? सारथी गुरु बना। सारथी ने दिव्य ज्ञान दे दिया गुरु को, ये कि जिसका बहुत लंबा दाढ़ी हो, लाल कपड़ा हो, वही गुरु। उसके बाद वापस आए, बोले वापस चलो बहुत हो गया। आए और उस सोचने लगे कि ये संसार इतना क्षणभंगुर है, जब सबको जाना ही है तो मैं क्यों यहां बैठा हूं? आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम आए हैं इस संसार में, सोचने लगे। इसी श्रीमद् भागवत कहता है कि अद्भुत ब्राह्मण ने 24 गुरु बनाए। भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव जी को कि अद्भुत ब्राह्मण ने 24 गुरु बनाए। और 24 गुरु कौन थे? सांप, मधुमक्खी, बेस्या, पिंगला, ये सब गुरु बन सकते हैं अगर सीखना हो तो। इस व्यक्ति को सीखना है उसके लिए गुरु। तो गौतम बुद्ध ने किससे सीखा? उस बूढ़े व्यक्ति से सीखा, वो उसका गुरु हो गया। उस डेड बॉडी भी गुरु हो गया। देखिए डेड बॉडी अगर आपको सीखना है तो समझना है, नहीं सीखना है तो एक महाजन को गुरु बना लीजिए, मत सीखिए, पड़े रहिए संसार में। संसार पोड़िया रही लो मजिया है, नहीं लो आस आपन कर्म भुजाए समन कहे लोचन दास। अपने कर्म फूट चुके हैं, महाजन के शरण में आके भी पड़े हुए। देखिए गौतम बुद्ध हैं, इसलिए कहते हैं घास सुखी हो तो एक चिंगारी गिर जाए तो आग लग जाता है, गांव के गांव चल जाते हैं कि नहीं, और अगर गीली हो तो फूंक मारते रहिए धुआं ही निकलेगा उससे, है ना। तो गौतम बुद्ध एक चिंगारी की, एक सुखी घास थे और एक चिंगारी पड़ी, कहां की? सारथी ने बता दिया, उनका दिव्य ज्ञान बता दिया, तुरंत समझ गए। लेकिन हर व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।